आज हम चुभन पर जिनसे मिलेंगे उन्हें एक कवित्री, साहित्यकार, समीक्षक, कलाकार, विचारक, प्रोफेसर, अनुवादक, दार्शनिक, संस्थापक अध्यक्ष इत्यादि अनेक उपाधियों के चित्र में संजोया जा सकता है, पर स्वयं का परिचय देते हुए उनका कहना है, मेरे लिए बस इतना ही, एक तलाश उन मोतियों की जो मेरे, आपके, हम सब के अंतर मन में कहीं गहरे, बहुत गहरे छुपे हैं, जिन्हें इंतजार है मेरा, आपका, हम सबका। ये तलाश ही बन जाती है जैसे मेरा जीवन, जो हर पल मुझे गिरकर संभलना सिखाती है, डूबकर तैरने की कला सीखने में व्यतीत जैसे सारा जीवन, और जो थोड़ा भी आंचल में आया उसे बांटते रहने का अथक प्रयास, इसी का हिस्सा मेरी कथाएं, मेरा साहित्य, जिन्हें पर काया प्रवेश कर जिया है मैंने, महसूस किया है उनका दर्द, जो शब्दों में बयां करना आसान तो नहीं, पर उन्हें संवेदनशील हृदय द्वारा आंखों में झांक कर दिल की धड़कनों तक पहुंचने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेंगलुरु से डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी से, और उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियों आदि के बारे में उनसे ही जानेंगे। नमस्ते इंदु मैम, चुभन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है।
नमस्ते, नमस्ते भावना जी।
और मैम,
अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे बुलाया।
हाँ जी मैम। और मैम, जितना भी आपकी शख्सियत को अभी तक मैंने जाना, तो यही लगा कि एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी विदुषी व्यक्तित्व को मैं मिल रही हूँ, और अपने श्रोताओं तक मैं आपकी बातों को पहुँचाऊँ, बस मैं यही चाहती हूँ। तो आज हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं मैम।
जरूर जरूर, आप जो भी पूछेंगी मैं उसका बिल्कुल आपको जवाब दूंगी। आपसे जो भी जानना चाहते जरूर पूछें।
हाँ जी मैम,
मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके, आपसे बातें करके, बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं आप।
जी मैम। और मैम, सबसे पहले तो आपके आरंभिक जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे, और ये भी कि आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे और कब शुरू हुई।
आपने बिल्कुल शुरू से सवाल किया है, यानी कि आप सही मायने में मुझे बिल्कुल अंदर से जानना चाहते हैं।
जी मैम बिल्कुल।
आपकी बात नहीं कर रही हैं, आप बिल्कुल शुरुआत की बात कर रही हैं, क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है ना, ये जीवन के शुरुआती दौर से जुड़ा है। साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई, तो मुझे भी पता नहीं कि मेरी साहित्यिक यात्रा कब और कैसे शुरू हुई।
और आपका बचपन भी कहाँ बीता मैम, ये भी हम जानना चाहेंगे।
हाँ बिल्कुल, मैं अपने बचपन के बारे में भी, तो पहले मैं बचपन के बारे में बताती हूँ, अपने आप साहित्यिक यात्रा पर चलने के लिए।
जी जी।
तो बचपन मेरा बिहार, मैं पटना से हूँ, बिहार पटना से, और वहीं पढ़ाई लिखाई सारी वहीं हुई है।
जी जी।
और मेरे पिताजी जो हैं बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें सबसे ज्यादा जो शौक था वो पढ़ने का था।
जी।
और हमारे घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, एक पूरा कमरा ही लाइब्रेरी था, और उसमें कोई ऐसी किताब जो साहित्य से संबंधित हो, दर्शन से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो,
जी,
और
जी।
उसके अलावा जितनी पत्रिकाएं होती हैं, जो उस समय जितनी पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, वो चाहे वो साहसी बालक हो या मुक्ता सरिता हो या वीर बालक की कथा हो या ओशो के ग्रंथ हो, चाहे वो महावीर वाणी हो या कृष्ण के बारे में ओशो ने लिखा है, या मैक्सिमम गोर्की की बात हो या टॉलस्टॉय की किताबों, मतलब सारी किताबें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में वहां पर उपलब्ध थी। और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे घर में 108 उपनिषद करके पूरी एक अलमीरा में सिर्फ उपनिषद थी, उसके अलावा वेद, चारों वेद, पुराण, और उसके अलावा कुरान, बाइबल, मतलब शायद किसी भी धर्म की किताबें मेरे पिताजी ने छोड़ी नहीं थी पढ़ना, सब धर्मों को उन्होंने पढ़ा था। और उनका एक ही शौक था, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी व्यवसाय करते थे कपड़े का, तो हमारे पिताजी, अगर आप डिग्री की बात करें तो उन्होंने 8 क्लास की पढ़ाई की है
जी,
लेकिन उस समय के जो एमए पास थे वो भी उनके सामने फेल थे।
बिल्कुल,
जितना उन्होंने स्वाध्याय से सीखा।
जी जी।
तो उनका एक ही शौक था कि व्यवसाय करके जितना समय बचता है रात में घर आने के बाद, वो आधी आधी रात तक सिर्फ किताबें पढ़ते थे। और शायद ये जो साहित्य की यात्रा या दर्शन की यात्रा या अध्यात्म की जो यात्रा है, वो अपने आप मेरे खून में रच बस गया। मेरी माँ बहुत आध्यात्मिक और बहुत दार्शनिक, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ जैसे बताया करती है कि मेरी माँ को गीता पूरी की पूरी कंठस्थ याद है। मतलब, और वो गा करके, अभी जब मैं अभी एक कार्यक्रम गीता पर दे रही हूँ तो मैं उसके लिए गीता के श्लोक पढ़ रही थी, तो मेरी माँ ने कहा ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं। और उन्होंने जो शुरुआत की पढ़ने की, तो मैं देखती रह गई कि संस्कृत में उनको पूरी गीता कंठस्थ याद है। तो मैंने माँ से पूछा आप पूरी गीता कैसे याद है, तो उन्होंने कहा कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हालांकि मेरी माँ ने 4 क्लास की पढ़ाई की है, क्योंकि उस समय ऐसा था कि 4 क्लास पढ़ ली, अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना आ गया, अब घर के काम सीखने हैं, शादी करनी है।
जी जी।
तो वो बाल विवाह का समय हुआ करता था, तो उस समय उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में जो रोज प्रार्थना होती थी
जी,
उनमें उन्हें रोज 18 श्लोक, मतलब एक एक जो अध्याय हैं, वो पढ़ करके उन्हें, मतलब गा करके उन्हें लोज करना था, उसकी प्रार्थना करनी थी
जी।
और अगर आप सोचो एक बच्चा रेगुलर कर रहा हो पूरे साल, तो नेचुरली कंठस्थ हो जाती है।
बिल्कुल।
और आज उनकी उम्र 80 से ऊपर की है, लेकिन उन्हें आज भी याद है, ये बहुत खास बात है
जी। यानी तो आपको विरासत में मिली ये सब बातें मैम?
मुझे विरासत में ये सारी बातें मिली हैं। और हमारे घर में जैन धर्म को माना जाता था, लेकिन उसके साथ साथ जो वैष्णव के धर्म थे वो भी उसी रूप में माने जाते थे। और हमारे दादाजी ने कभी किसी धर्म के बीच में भेद नहीं किया, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कभी भेद नहीं सिखाया। तो सारे धर्मों के प्रति भी मेरी उतनी ही आस्था रही हर तरह से। तो ये सारी चीजें ना, मुझे लगता है मेरे खून में रच बस गई।
बिल्कुल बिल्कुल।
और साहित्यिक यात्रा की बात है, वो मैं कुछ पंक्तियों में आपको सुना देती हूँ।
जी बिल्कुल मैम।
कि उतर कर अंतर मन में थम देता है कोई उंगलियों में लेखनी, उतर कर अंतर मन में थमा देता है कोई उंगलियों में लेखनी, भाव भरे शब्द पन्नों पर गढ़ने लगता है, मुझे पता नहीं चलता। मुझे पता चलता है तब, जब नगीने की तरह चमकते हुए शब्द मेरे अंतर मन को भी आलोकित कर उठते हैं, और वो मेरे पास बैठा मुस्कुराता है बस। और वो मेरे पास बैठा मुस्कुराता है बस, रचनाकार स्वयं मुझे रचनाकार का श्रेय दे जाता है। रचनाकार स्वयं मुझे रचनाकार का श्रेय दे जाता है, इस अलौकिक जगत में उसकी यही अलौकिकता मुझे भाव विवल कर देती है। और मैं अचंभित कभी उसे देखती हूँ, कभी उन उकेरे अक्षरों को जो मेरे लिए बीज मंत्र बन हो जाते हैं उसके संसर्ग से। बस इतना सा ही है मेरा और मेरी लेखनी का परिचय।
बहुत सुंदर मैम, साहित्यिक यात्रा को बहुत सुंदर शब्दों में आपने समेट दिया। आपके व्यक्तित्व से इधर लग रहा है मैम कि आपके रग रग में वास्तव में साहित्य और सावध संस्कृति कलाएं सब भरी हुई है, एक पता चल रहा है मैम आपसे बात करके।
और इसके साथ साथ ऐसा हुआ कि फिर हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ अमर जी जो वर्तमान में दूरदर्शन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रिटायर हुए हैं और वहाँ मीडिया सलाहकार आज भी हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े कवि और चित्रकार भी हैं। और उन्होंने मीडिया से बाद में अपनी मास्टर डिग्री भी की और पीएचडी भी किया है। तो उनसे बचते ही कि वो हमारे घर में रहते थे, आते जाते भी थे और रहते थे, पहले तो रहते थे, तो उनका भी संसर्ग था, उनका भी साथ था। और हमारी माँ यही कहती थी कि ये आपके बड़े भाई हैं, तो हम उन्हें अपने बड़े भाई की तरह, और गुरु भी बन गए वो हमारे धीरे धीरे। क्योंकि 12 साल की उम्र में मैंने पहली कविता लिखी थी, जो कि उनके कारण उन्होंने वहाँ की पटना की धारा पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी। तो कहीं ना कहीं एक बीज जो है ना, वहाँ का भी उनका पड़ा था। और उनका चूंकि वो हमसे काफी उम्र में बड़े भी, और कविता बहुत अच्छी लिखते थे, चित्रकारिता में उनका बहुत शौक था, तो शौक जो है साहित्य का और चित्रकारिता का, वो शौक हम भाई बहनों में उनके द्वारा भी आया। तो डॉक्टर अमर ने तब से लेकर के आज तक, आपको एक अच्छी सी बात बताऊं कि उस समय हम धर्म भाई जो बनते थे तो राखी बांधते थे, आज तक वो मेरी हर साल मैं उन्हें राखी भेजती हूँ। आज उस बात को आप समझ लें कि मुझे लगता है 40 साल से ऊपर हो गया है, और वो बहुत सहेज राखियों को लगते हैं, और उन्होंने एक बड़े भाई और गुरु होने का फर्ज इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि आगे जो आप सवाल करेंगे कि हमारी जो संस्था जो मैंने बनाई है
जी जी।
तो ये उनके प्रोत्साहन से ही बनी है। वो बहुत सालों से चाहते थे कि मैं बनाऊं ऐसी संस्था, और मेरी कविताओं के लिए उन्होंने, जब वो दूरदर्शन थे आज से 12-15 साल पहले भी, उन्होंने बहुत बार मुझे बुलाया कि आप दूरदर्शन में आए और अपनी कविताओं की प्रस्तुति दें
जी।
वहाँ कविताओं का कार्यक्रम होता था, अब तो दूरदर्शन में भी साहित्य गुम होता जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन जब वो थे तो वो अब रिटायर हो चुके हैं, पिछले साल ही रिटायर हुए, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस समय मैं अपनी गृहस्थी में मगन थी और नहीं उस समय निकलना हो सकता था। तो साहित्य का जो बीज है वो मेरे पिता की देन है, और मेरे धर्म भाई अमरनाथ की देन है, और मेरी बड़ी बहन चंदा प्रहलाद का, जो मुझसे उम्र में भी बड़ी है, अनुभव में बड़ी है, और वो भी उस समय बहुत सुंदर लिखती थी, क्योंकि उनका उस पूरी जो लाइब्रेरी जो हमारे घर की थी ना, जिसको
जी,
उसका
जी।
सदुपयोग मैं कहूँ तो उसने बहुत अच्छी तरह से किया था, और उसकी भाषा शैली और उसका लेखन अपने आप में अद्वितीय है
जी।
तो उसका भी प्रभाव हम पर पड़ा, और इस तरह से मेरी साहित्य यात्रा शुरू
जी। बहुत सुंदर मैम, आपकी साहित्य यात्रा सुनकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और अभी आपने जो अपनी संस्था अभ्युदय के बारे में किया, तो आप उसके संस्थापिका हैं, अध्यक्ष हैं, और शायद उसकी 23 शाखाएं हैं पूरे देश में मैम, विदेशों में भी है ना?
देश में भी, हाँ, विदेश में 3 शाखाएं और भारत के करीब 15-16 राज्यों में है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं भी 4-5 बना रखी है, अलग अलग विषय को लेकर, तो 23 से 25 कुछ शाखाएं हैं
जी। तो मैम कैसे आपको लगा कि साहित्य, संस्कृति और कला, इन सबका समावेश करके एक ही संस्था बनाई जाए, और इनसे संबंधित सभी साहित्यकार, कलाकार, इन सबको आपने एक ही पटल से जोड़ा, तो कैसे आपको ये विचार आया?
नहीं, विचार तो बचपन से जैसे कि शौक था कि कुछ समाज के लिए करना है, कुछ देश के लिए करना है।
नहीं, लेकिन आपके संस्था का जितना मैंने जाना, मतलब खाली साहित्य नहीं, आपने संस्कृति का, कलाओं का, हर चीज पर आप उठाते हो अपना विषय उनके। जी जी
बिल्कुल। नहीं, वो सारे विषय को जोड़ने का जो मेरा भेद था, जब मैं दक्षिण भारत में आई, और दक्षिण भारत में यहाँ बेंगलोर में रहते हुए मुझे आज 35 साल हो गए हैं, शादी के 1 साल बाद मैं यहाँ आ गई थी, तो यहाँ के लोगों से मिली, बहुत अच्छे, बहुत और बहुत अच्छे लोग मुझे लगे। साहित्य की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, यहाँ की संस्कृति उच्च कोटि की, और मुझे तो ऐसा लगा कि असली भारत यही बसता है।
मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि हम लोग तो हिंदी भाषी प्रदेश में है तो काम करते हैं, ठीक है, आप लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहकर आप लोगों को कुछ दिक्कतें आती हैं कि, बल्कि एक अच्छा अवसर मिलता है अपनी बात कहने का, आप इसके बारे में भी कुछ बताइएगा।
हाँ, जरूर बताऊंगी। तो मैं उसी जा रही थी कि जब मैं दक्षिण भारत में आई, यहाँ पर यहाँ के लोगों को हिंदी से कोई बैर नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग हिंदी सीखते हैं, जानना चाहते हैं, हिंदी के प्रति बहुत उसमें लगन और श्रद्धा है। लेकिन कहीं एक तकलीफ थी कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को नहीं जानने की कोशिश करते हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये गलत है, ये कहीं ना कहीं, और इसीलिए यहाँ के लोग जो है ना, फिर अपने आप में संकुचित हो जाते हैं। वो उनका दोष नहीं है, वो उत्तर भारत के लोगों का दोष है कि हम यहाँ आकर के अपनी भाषा, हम चाहते हैं कि हिंदी तो लोग सीखें, और निश्चित ही सीखनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत को जोड़ने वाली अगर कोई कड़ी हो सकती है तो वो इकलौती हिंदी हो सकती है। और इस चीज को यहाँ के लोग नहीं समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, किंतु हर आदमी ये चाहता है ना कि उन्हें भी महत्व मिले। तो यहाँ की भाषा को, यहाँ की संस्कृति को हमने जानने की कोशिश नहीं की उत्तर भारत में, और इसीलिए मुझे लालायित किया कि नहीं, पहले तो भाषा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, जो असली भारत बसता है दक्षिण में, असली संस्कृति, जो हम पुरातन संस्कृति सनातन संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ आज भी पत्तलों, केले के पत्तल को बिछा कर उस पर भोजन किया जाता है शादी ब्याह में भी। कितने से बड़े बड़े से बड़े लोग हों, लेकिन वही केले के पत्तल पर और उस तरह से भोजन को परोसना, उसी तरह से भोजन में उन चीजों का ख्याल रखना जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और हमारे पौराणिक जो हम गाथाएं पढ़ते हैं उसमें जिस तरह से वर्णन है, शादी ब्याह का भी जो मंगल कार्य है उसको पूर्णतः मंगल कार्य के रूप में रखना। जैसे कि मैं देखती हूँ कि उत्तर भारत में बहुत कुछ बहुत जल्दी हम एक दूसरे का एडॉप्ट करके परिवर्तन ले आते हैं,
बिल्कुल ले आते हैं
यहाँ के, हाँ, लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी परंपरा, और ऐसा भी नहीं उसको रूढ़िवादिता नहीं कह सकते, जो परंपरा बहुत सुंदर है, बहुत सही है आपके सामाजिक जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, उन परंपराओं का निर्वाह आज भी यहाँ चल रहा है।
जी,
एक तो पहली ये बात थी जो मुझे लगा कि उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का प्रयास अगर करे तो वास्तव में ये बहुत सुंदर भारत बनेगा।
जी,
दूसरा ये था कि जब भाषा को, साहित्य जब मैंने जाना, यहाँ एक से बढ़कर एक साहित्यकार हुए हैं, किंतु उनकी चूंकि यहाँ की भाषा में है और अनुवाद पर कम ध्यान दिया गया, तो उत्तर भारत के लोग यहाँ के साहित्य से वंचित रह जाते हैं, और यहाँ के लोग भाषा के कारण वहाँ के साहित्य से वंचित रह जाते हैं।
जी, बिल्कुल।
तो एक ये कारण दिखा कि अनुवाद पर हमारा जोर होना चाहिए। अनुवाद के अलावा मुझे जो एक बात समझ में आई कि हिंदी पिक्चरें पूरे भारत में चलती हैं, इवन विश्व में भी चलती हैं।
बिल्कुल।
और उसके कारण यहाँ के लोग भी हिंदी सीख जाते हैं। तो जैसे हिंदी पिक्चर में, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था, आपने भी सुनी।
जी, बिल्कुल।
तो उसमें एक शब्द का प्रयोग होता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या,
कुड़माई।
तो वो कुड़माई शब्द जो है पंजाबी शब्द है, इसका अर्थ सगाई से है। अब चूंकि वो इतना प्रसिद्ध हुआ इस कहानी, ये कहानी का जो थीम था इतना फेमस हुआ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक कहानी के प्रसिद्ध हो गए।
जी जी।
और वो शब्द उसमें आया तो हम सब उस पंजाबी शब्द को हम जानने लगे।
जान गए जी।
तो फिर मुझे ये एक बात समझ आई कि फिल्मों के जरिए, गीतों के जरिए, जैसे वो गिजन बंगाली में कहते हैं कि आमी तुम आके ढालो, तो हमें वो पता चल गया। तो इस तरह से हम अगर अपने साहित्य में, अगर उत्तर भारत के लोग अपने साहित्य में कुछ दक्षिण भारत के शब्दों को, और दक्षिण भारत के लोग हालांकि संस्कृत के तो बहुत सारे शब्द यहाँ की भाषा में हैं, लेकिन और भी उत्तर भारत के प्रचलित शब्द अगर यहाँ के भाषा में, यहाँ की कहानी के अंतर्गत इस तरह से अगर हम समावेश करना शुरू करें तो हम एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, और इसके साहित्यकारों का आह्वान सबसे ज्यादा।
ये बहुत अच्छी बात मैम आपने कही, मतलब एक तरफा बात ही कही जाती है कि दक्षिण भारत के लोग नहीं इधर से जुड़ते, वो हिंदी नहीं सीखते, लेकिन आपने आज, हाँ, एक बात ये मुझे भी लगा, मुझे भी अपनी कमी का एहसास हुआ, हमने भी नहीं कभी कोशिश की कि डॉक्टर स्वर्ण ज्योति जी ने, डॉक्टर श्रीलता जी ने, इन सब ने हमारे चुभन के कार्यक्रमों में आके, डॉक्टर वत्सला जी ने, सबने कार्यक्रम दिए हैं दक्षिण भारत की भाषाओं के, लेकिन कार्यक्रम हो गए लेकिन हमने वाकई में उन लोगों से और आगे जानने की कोशिश नहीं की। अब मैं प्रयास करूंगी कि सब हम लोग जुड़े रहें और दक्षिण भारत की भाषाओं का भी हम सीखने की कोशिश करें,
और कहानियां जब हम लिखते हैं, हम जब लेख लिखते हैं
जी, उसको तो रोचक बनाए। जी, जी,
नहीं, हम अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं उसकी जगह अगर हम कन्नड़ के, तमिल के शब्द लिखकर ब्रैकेट में उसकी हिंदी कर दें, या कन्नड़ वाले हिंदी के शब्द लिखकर ब्रैकेट में कन्नड़ का शब्द लिख दें, तो धीरे धीरे ये भाषाओं के सबसे ज्यादा जो रिलेशन जो बनते हैं, जो रिश्ते बनते हैं, वो भाषाओं के कारण नहीं बनते।
बिल्कुल।
तो भाषा जो, ये मैंने जो महसूस किया, तो सबसे पहले मेरा जो आंदोलन था वो इस बात पर है कि उत्तर और दक्षिण भारत, तो मैं पहली बार जब मैं बेंगलोर आई तो मैंने एक साल के अंदर अंदर सबसे पहले कन्नड़ सीखी।
जी जी।
मैंने कहा मुझे यहाँ की भाषा पहले आनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में हम रहते हैं, उस प्रदेश की भाषा हमें आनी ही चाहिए।
जी।
तो अगर मैं कर्नाटका में हूँ तो कन्नड़ की भाषा आनी चाहिए। तमिलनाडु में हमारा बिजनेस है तो मैं तमिलनाडु में गई तो वहाँ मैंने तमिल सीखा कि मुझे तमिल भी आनी चाहिए।
जी जी।
तो इस तरह से आप जहाँ रहते हो वहाँ की भाषा, आपकी मातृभाषा के अलावा वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। और भारत चूंकि इतना विशाल देश है, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दक्षिण भारत की भाषाओं को थोड़ा थोड़ा प्रोत्साहन दें उत्तर भारत की ओर, और उत्तर भारत के लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो दक्षिण भारत के थोड़े थोड़े शब्दों को जानें, जिससे कि थोड़ी थोड़ी बातें वो कर सकें।
चलिए मैम,
आज की भारत में पूरी तरह से चलती है, लेकिन यहाँ की हिंदी को ये नकारते हैं इसी आधार पर कि हम क्यों, आप क्यों नहीं आगे बढ़े। तो वो मैं यहाँ आगे बढ़ी हूँ, और मैं जब यहाँ आगे बढ़ी हूँ तो मैंने देखा है कि जो हमारे दक्षिण भारतीय, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो बहुत खुश होते हैं ये जान करके कि मुझे कन्नड़ आती है
जी।
तो वो मुझे अपना मानने लग जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो फिर हिंदी सीखते हैं
जी जी।
तो ये एक प्रयास है। और आपका जो दूसरा प्रश्न था कि मैंने अभ्युदय के बारे में किस तरह से सोचा
जी जी,
तो एक मुझे कुछ संस्था बनानी थी, कुछ करना था कार्य, और मैंने 20 साल के पहले एक संस्था बनाई थी बेंगलोर में, 20 नहीं 25 साल हो गए करीब, सृष्टि संगम के नाम से हमने संस्था बनाई थी, जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल्स में योगदान देने के लिए, ओल्ड एज में योगदान देने के लिए, इस तरह से हमने कुछ लोगों के साथ, चंद मुट्ठी भर अपने दोस्तों के साथ संस्था बनाई थी, और अभी भी कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने जाना कि बेंगलुरु में, आज से 5-6 साल पहले जब मैंने जाना कि बेंगलुरु में साहित्यिक गतिविधियां हिंदी में भी बहुत होती हैं, और यहाँ के लोग भी, दक्षिण भारत के लोग हैं, वो भी हिंदी में साहित्य रचते हैं, और उनका उनका अपना साहित्य भी बहुत विशाल है, जो कि मुझे एक एक राजलक्ष्मी मैम मिली थी जो तमिल की थी, और उन्होंने कुछ तमिल के 40 ग्रंथ थे और उसका उन्होंने अनुवाद हिंदी में किया था, और उसकी एडिटिंग के लिए उन्होंने मुझे दिया था।
अच्छा,
छोटे छोटे किताबें थी उनकी और उसका। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ हिंदी के लोग कितने ज्यादा हैं, बोलना चाहते हैं, सीखते हैं और जानते हैं यहाँ के लोग भी। तो धीरे धीरे मेरा एक उत्साह बढ़ा कि मैं किस तरह से इसे जोड़ूं, और फिर हमारी संस्कृति, भाषा संस्कृति का ही तो एक अंग है, भाषा और साहित्य।
बिल्कुल।
तो फिर संस्कृति, और भारत के हर घर में एक कलाकार बसता है
जी,
हर व्यक्ति की अपनी एक रुचि होती है, और हर व्यक्ति कविता नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति कहानी नहीं लिख सकता
जी, जी।
लेकिन मुझे एक ऐसी संस्था बनानी थी जो हर के लिए सुलभ हो
जी।
अगर आप नृत्य चाहते हैं तो वो भी हो, अगर आप संगीत चाहते हैं तो वो भी हो, अगर आप दर्शन, और मैंने खास करके ये देखा कि जो थोड़े बड़े हो गए, जो रिटायर के लाइफ को जी रहे हैं, जो बड़े लोग
जी जी,
उनकी जिंदगी में डिप्रेशन सबसे ज्यादा इसलिए कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है
जी।
और हम आने वाली पीढ़ी के लिए तो सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, लेकिन उस पीढ़ी के लिए नहीं सोचते जिसके कारण पीढ़ी आने वाली है
जी।
तो वो लोगों का जो इंटरेस्ट है, उनका जो शौक है, जो कहीं मर रहा है, जो मौत के इंतजार में जी रहे हैं, वो मौत के इंतजार में ना जिए, उनको उनके शौक की चीजें करने का, करने के लिए मंच मिले, मौका मिले। ये एक मुझे कहीं ना कहीं चुभती थी ये बात, जैसे आपने चुभन की बात कही ना, ये मैंने अपने घरों में देखा है कि बड़े लोगों के पास कुछ करने, जैसे मेरी सास इतनी बड़ी कलाकार है, इतना उन्होंने उस समय तो कढ़ाई सिलाई बुनाई सब सीखते थे ना, वो क्रोशिया का इतना कुछ काम उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अब इस उम्र में अब क्या करना है। मैंने कहा नहीं, आपको करना है, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, तो जीने का जो एक जज्बा होता है ना
जी जी,
वो जगाने की जरूरत है उन लोगों को, जो लोग जिनके जिनके बच्चों के पास समय नहीं है, बच्चों का भी दोष नहीं है, हर किसी की अपनी जिंदगी है, लेकिन उनके लिए वो अपना कुछ कर पाए
जी।
और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनके लिए कर पा रही हूँ। काफी ऐसे लोग हैं जो 70 पार के हैं, खास करके हमारी जो कैलिफोर्निया शाखा के लोग हैं, वो 70 पार के हैं सारे, और वो कहते हैं आपने हमें 20 साल छोटा कर दिया।
अरे वाह, बहुत अच्छी बात मैम, आपने तो प्रेरणा दे दी बिल्कुल।
नहीं, वो बच्चे, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे पहले जब आते थे मिलने तो हमारे पास, हम ये कहते थे बच्चों को हमारे लिए वक्त नहीं है, आज बच्चे कहते दादी आपको हमारे पास वक्त नहीं।
बहुत अच्छी बात, वाह।
तो ये जब वो कहते हैं तो कहीं अंदर खुशी होती है कि चलो कुछ तो है जो अच्छा हो रहा है, चाहे हम, अब दुनिया में तो अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर एक व्यक्ति भी जी पा रहा हो अच्छी जिंदगी, तो मैं अपने जीवन को उसके लिए सार्थक समझूंगी।
किसी एक को भी हम संतुष्ट कर दें जी,
संतुष्ट कर दें। तो इस दृष्टि से मैंने सोचा कि अच्छा, साहित्यिक संस्थाएं बेंगलुरु में भी बहुत हैं
जी,
बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं हैं
जी,
और उनमें ज्यादातर जो कविता लिखते हैं, जिनका साहित्य में इतनी रुचि है कि वो कविता लिखते हैं और अपनी कविता को मंच पर सुनाना चाहते हैं
जी,
उन्हें मंच देने के लिए बेंगलोर में बहुत सारे मंच हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे मंच है, लेकिन मुझे एक ऐसा मंच तैयार करना था जहाँ सिर्फ बात कविता की नहीं हो, जहाँ एक तो लोगों को सीखने मिले। और उसके लिए मैंने एक अभिधर काव्य एक गुरुकुल खोला है, व्हाट्सएप पर खोला था क्योंकि कोरोना काल था। और आपको बताऊं कि जिन लोगों ने 20 साल 40 साल पहले तक साहित्य छुआ ही नहीं है
जी,
वो लोग आज कविता लिख रहे हैं और श्रेष्ठ कविता लिख रहे हैं। उन्होंने सारे छंद सीखे, अलंकार सीखा, और वो जब कहते हैं कि हमने मतलब मुझे पता नहीं हम कविता लिख भी सकते हैं आपने मतलब किस तरह से, तो वो अभिधे काव्य गुरुकुल हमारा इतना अच्छा चल रहा है 1.5 साल से, अब तो 2 साल हो जाएंगे
जी जी।
तो कहीं वहां से संतुष्टि मिल रही है। जो बड़े लोग हैं जिनको दर्शन अध्यात्म में रुचि है, वो कहीं कुछ पढ़ते हैं कहीं कुछ सुनते हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके लिए हमने अभिधर दर्शन अध्यात्म समूह बनाया। तो उसमें सारे लोग जुड़े हैं, हर व्यक्ति अपनी बात कहने का मतलब ये कि मुझे एक बात समझ में जो आई, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण जो ये होता है कि आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, अंदर घुटते रहते हैं
जी बिल्कुल।
और वो व्यक्त करना आप पेंटिंग में भी कर सकते हो, कढ़ाई सिलाई बुनाई में भी कर सकते हो, खाना बनाने में भी कर सकते हो, दर्शन में भी कर सकते हो, कविता और कहानी और लेख में भी कर सकते हो।
घुटन ही जीवन की चुभन है मैम, इस चुभन को कैसे निकाला जाए, बस ऐसे आप जैसे लोगों का कुछ प्रयास हो जाता है और एक ये जीवन दान मिलता है लोगों को बिल्कुल।
हाँ, तो इस दौरान मैं जरूर 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगी। तो इस दौरान जब मैं कोरोना काल में नीरज कुमार अवस्थी जो कि लखीमपुर से हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपनी कथा काव्य रंगोली से मुझे जोड़ा था, वहां पर अतिथि संपादक के रूप में बनाया। और उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया जो कि उन्होंने मुझसे ही शुरू किया कि रोज सुबह कोरोना काल में आधे घंटे का मैं एक कार्यक्रम दूं जो कि लोगों को इस डिप्रेशन से निकाल सके या कोरोना की जो समस्याएं हैं उससे किस तरह थोड़ा सा दूर कर सके मानसिक रूप से।
मैम मैं ये भी जानना चाहती थी, शायद 200 दिनों तक आपने लगातार लाइव प्रसारण किया अपने कार्यक्रमों का,
लाइव प्रसारण किया जी बिल्कुल। 200 दिनों तक मैंने पूरे 4 महीने मैंने उसका लाइव प्रसारण किया, सुबह आधा घंटा। और आपको बताऊं कि हफ्ता भर करने के बाद लगा कि क्या करूं मैं, सही जा रही हूं गलत जा रही हूं। और आपको बताऊं मेरे पास बंबई से एक फोन आया और उस लेडी ने मुझसे ये कहा कि मैं 3-4 महीनों से इतनी डिप्रेशन में थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन आपका प्रोग्राम सुनकर के आपने जो कहा अपने आप को व्यक्त करो चाहे किसी भी तरीके से करो
जी जी,
तो आप डिप्रेशन से बोली मैं एक आज एकदम स्वस्थ हूँ, अब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक ऊर्जा मिलती है मुझे,
बिल्कुल ऊर्जा,
मैं सही जा रही हूँ
जी।
तो वो जो 4 महीनों का जो कार्यक्रम था 200 दिनों का, वो मतलब इतना आगे बढ़ चुका था, लोगों को इतना पसंद आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन 4 महीने बाद दिवाली आने वाली थी, नीरज कुमार अवस्थी जी के संस्था में कुछ समस्याएं आ गई थी और मैं भी थोड़ी व्यस्त थी, तो मैंने उस कार्यक्रम को एक बार रोका था कि हम इसको फिर शुरू करेंगे जब उनकी संस्था की समस्या निकल जाएगी
जी।
लेकिन बहुत अफसोस की बात है, फरवरी में शुरू करना था, मार्च में शुरू करना था, और मई से मैंने पक्का किया कि मई से हम शुरू कर रहे हैं, और इतना अफसोस है कि उसी समय नीरज भाई को कोरोना हुआ और वो चले गए। तो और वो संस्था भी, कोशिश की मैंने उस संस्था को उसी तरह कायम रखने की, लेकिन अंदरूनी बहुत सारी उसमें समस्याएं थी, कुछ पारिवारिक समस्याएं
जी जी, बहुत ही दुखद मैम। इतना अच्छा व्यक्ति तो चला जाए हमारे बीच में से तो बहुत ही नुकसान होता है।
तो वो व्यक्ति तो अच्छा, वो मतलब इतनी अच्छी कविता लिखते थे, सिर्फ ऐसा ही नहीं था, उनका तो पूरा मैंने एक आलेख लिखा है कि वो हर क्षेत्र में मास्टर थे। मुझे तो लगता है जैसे कोई देवदूत है, और मुझे बड़ी बहन और माँ से ज्यादा इज्जत देते थे। कभी मुझे बड़ी बहन दीदी तो कहते थे, लेकिन कहते थे माँ के बाद मैं आप ही को मानता हूँ, मेरी माँ के बाद। इतना उन्होंने मुझे रेस्पेक्ट दिया था, बहुत मानते थे। और जो मतलब उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व था, वो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी थे, बहुत बड़े समाज सेवी भी थे, लोगों की बहुत हेल्प करते थे हर दृष्टि से। तो एक दृष्टि उन्होंने मुझे दी लोगों की मदद करने की इस साहित्य के तरीके से
जी जी।
और दूसरा, जब वो मैं कार्यक्रम कर रही थी उस समय मेरी एक फ्रेंड है ममता मिश्रा
जी,
और डॉक्टर अमरनाथ अमर, मेरी बहन चंदा प्रहलाद का जी, तो ये दो चार नाम ऐसे थे जो चाहते थे कि मैं कावी रंगोली के पटल से जो कार्यक्रम कर रही हूँ, जिसके कारण की कावी रंगोली विश्व प्रसिद्ध हुआ, तो मैं क्यों नहीं एक अपनी संस्था बनाती हूँ। मेरी संस्था तो बनी हुई थी, मैंने इन्हें समझाया था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, आप अपना कार्यक्रम अपनी संस्था से करो, हमारी एक संस्था होनी चाहिए। और ये दृष्टि अमर जी ने दी कि संस्था सांस्कृतिक भी होनी चाहिए, और मेरी दृष्टि में तो था ही, और जो उसका आध्यात्मिक पक्ष है, सांस्कृतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष, वो मेरा था, क्योंकि मैं बचपन से ही दर्शन और अध्यात्म में रुचि रही थी मेरी
जी।
और उस बारे में मेरा जो पीएचडी का जो विषय था वो भी दर्शन से संबंधित था, वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी जैन साहित्य में वर्णित दर्शन एवं सिद्धांतों का विश्लेषण, ये विषय मैंने चुना था और इस पर मैंने पीएचडी भी की थी। तो फिर मैंने कुछ हमारी मेरी फ्रेंड जो ममता मिश्र अब नीदरलैंड में रह रही है
जी जी,
उसकी इच्छा, कुछ डॉक्टर अमरनाथ की इच्छा, मेरी बहन की इच्छा और मेरी अपनी जो सोच थी, उन सबको लेकर मैंने कहा एक ऐसी साहित्यिक संस्था खोलनी जिसमें सिर्फ काव्य पाठ हो तो जरूरत नहीं। तो बेंगलोर में एक शब्द साहित्यिक संस्था जो कि 25 सालों से काव्य के ऊपर साहित्य के लिए काम कर रही है, तो उसमें मैं उस समय सचिव की भूमिका में थी और बहुत अच्छा कार्य कर रही है वो, लेकिन इसलिए मुझे लगा कि एक और काव्य से संबंधित संस्था खोलने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं था, और मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये था कि भारत भारत को जाने, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत को बिल्कुल नहीं जानते, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत से कटे हुए थे, तो मैंने कहा कि संस्कृति के स्तर पर भारतीय संस्कृति एक ही संस्कृति है, तो वो सब जाने एक दूसरे को, पहले भारत के लोग तो जाने, तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि हम एक ऐसी संस्था बनाए जो भारत के हर राज्य में हो और हर राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों के साथ जुड़े हुए हों। और जैसे अब मेरी जो संस्था है, जैसे अगर गुजरात में मेरी शाखा है तो उस शाखा में दक्षिण भारत के लोग भी जुड़े हुए हैं, बंगाल में है तो उसमें आप मिलजुल करके सभी शाखाओं में जुड़े हुए होते हो, तब आप एक दूसरे के बारे में जानते हो, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ के कलाकार, तो ये एक दृष्टि मेरी विकसित हुई। और इस दृष्टि, ये दृष्टि तो मेरी अपनी थी, मैं ऊपर वाले की कृपा से, या मैं कहूँ कि उस ऊपर वाले की दृष्टि थी जिसने मुझे ये सुझाया, और इसके सुझाने से मैं एक ऐसी संस्था की संस्थापक पाई जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, भाषा सभी स्तर पर भारत को, भारत की एक सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने रखना।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया मैम, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि एक दूसरे, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, अनेकता में एकता की बात हम करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती, और इस तरह के प्रयास जो इस बात को सफल करते हैं। और मैम जैसा कि आपने कहा कि दक्षिण भारत के लोगों को थोड़ी ये शिकायत रहती कि इधर के लोग हम उत्तर भारत के वहाँ के शब्दों को, वहाँ की संस्कृति को हम लोग नहीं बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करते, तो अब चुभन का ये प्रयास होगा कि हम अपने हर कार्यक्रम में दक्षिण भारत के किसी शब्द का जरूर प्रयोग करेंगे, ये हमारा प्रयास होगा।
बिल्कुल बिल्कुल,
आपकी बात आज हमारी बात का कम से कम एक ये सार्थक वो हो कि हम इस बात पर रहे अपनी।
और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत की जो भाषा है वो द्रविड़ से निकली है, जबकि उत्तर भारत की अलग है कि लिपि जो है, लेकिन मैं देखती हूँ कि दक्षिण भारत, जैसे उत्तर भारत की ज्यादातर भाषाओं के हम कहते हैं कि उसकी जननी संस्कृत है
जी,
लेकिन उत्तर भारत में जितनी ज्यादा संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है यहाँ की भाषाओं में, उतना प्रयोग तो हम दक्षिण उत्तर भारत में नहीं करते हैं। दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे नीर, सबसे पहले मैं आई थी तो नीर शब्द सबसे आसान लगा था मुझे, क्योंकि संस्कृत मेरा सीखा हुआ था तो नीर का मतलब जल होता है, हमें पता था
जी।
तो इसलिए तो वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, तो कुछ हम संस्कृत के शब्दों को भी अगर प्रयोग करते हैं तो वो उत्तर भारत के लोगों के लिए आसान होता है और दक्षिण भारत के लोगों को वो अपने शब्द लगेंगे।
जी जी बिल्कुल मैम,
तो ये वाली बात है।
और मैम थोड़ा सा हम आपके लेखन पर आते हैं, आपका काव्या नामक उपन्यास जो डॉक्टर मंजरी पांडे जी के जीवन संघर्ष पर आपने लिखा है, तो उसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि काफी चर्चित भी रहा और शायद इसका 8 भाषाओं में अनुवाद हुआ है मैम।
जी अनुवाद अभी हो रहा है, ऑलरेडी 3-4 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी की आ गई है, तेलुगु आ गई है, मराठी में लिख लिया गया है, अभी आने वाली है, और उसके अलावा असमिया, गुजराती और बंगाली और तमिल, इन भाषा और कन्नड़, सॉरी कन्नड़ में, तो इनमें अनुवाद इसका हो रहा है। तो वास्तव में ये जो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो मैं ये कार्यक्रम कर रही थी, जो मैंने आपको बताया काव्य रंगोली से जो मैं कार्यक्रम कर रही थी सुबह का, उसके साथ साथ मैंने 3 कार्यक्रम और शुरू किए थे, जो कि मैं वीक वीक में 3 और कार्यक्रम करती थी, वीकली कार्यक्रम, जो हमने साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया था। उसमें एक कार्यक्रम था दिल से दिल तक, एक कार्यक्रम था कि मुश्किल क्या है, मतलब कोरोना काल में या जीवन में जितनी भी मुश्किलें आती है मुश्किल नहीं है, अगर हम उसको उस तरह से नहीं लेते हैं तो हर समस्या का समाधान है। तो एक वो कार्यक्रम हमने मुश्किल क्या है, एक हमने बिंदु से सिंधु की ओर, इस तरह के 3 कार्यक्रम हमने शुरू किए थे, और फिर और 1-2 कार्यक्रम भी शुरू किए। तो वो जो दिल से दिल तक का कार्यक्रम था, हर मंगलवार को शाम को 4:30 करते थे, उस कार्यक्रम के लिए मुझे किसी ने एक नाम दिया था, डॉक्टर मंजरी पांडे जी का।
अच्छा।
और उनसे जब मैंने दिल से दिल की बात की उस कार्यक्रम के दौरान, जैसे आप मुझसे अभी साक्षात्कार कर रही हैं, तो जो उन्होंने बताया, मतलब जो बात करने वाली जिनसे मैं बात करती, जैसे आपने मुझसे पहले भी बात की है
जी।
वैसे ही मैंने उनसे पहले जब 1-2 बार बात की तो बात इतनी लंबी हुई, और उनके बारे में जब मैंने जाना तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक प्रेरणा आई, और मैंने उसी समय उनसे कहा कि आपकी कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि मैं इस पर उपन्यास लिखूंगी अगर आप इजाजत दें। उन्होंने कहा ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं जानती थी
जी।
तो उन्होंने कहा ठीक है लिख लीजिए, और मुझे पता नहीं कैसे वो प्रेरणा हुई कि मैं उसी दिन उनसे बात करके फोन रखने के बाद 4 घंटा मैंने उनकी कहानी शुरू की लिखनी
जी।
और रात में 11 बजे मैंने जब उनको सुनाया तो वो दंग रह गई सुन करके। तो फिर उसके बाद हम बातें करते रहे, और मैंने ये कहा था कि अगले आपके जन्मदिन पर मैं इस किताब को दूंगी। तो 28 मई को उनका जन्मदिन होता है, उस समय तो जन्मदिन गया ही था
जी।
बात मेरी कुछ जुलाई के करीब है, तो फिर अगले जन्मदिन तक मैंने उस किताब को पूरा किया। और उस किताब को लिखने का जो मेरा जो प्रयोजन था वो ये था कि एक औरत इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी अपने आप को किस तरह बिना डिगे स्थापित कर सकती है
जी।
अगर वो अपने संकल्प में, दृढ़ता में, मतलब प्रबल अगर है उस, वो दृढ़ है, तो बिना समझौता किए, बिना नीचे गिरे वो बहुत ऊपर उठ सकती है।
बिल्कुल।
तो ये चीज मंजरी पांडे जी की जीवन गाथा बताती है
जी।
और इसलिए ये हर हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, सिर्फ औरत की बात नहीं है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति औरत होते हुए भी अगर वो अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाती है तो पुरुष तो कर ही सकते हैं ना।
बिल्कुल।
तो हर व्यक्ति को वो प्रेरणा देती है, और वो सच्ची कहानी है मृदुल की, सॉरी डॉक्टर मंजरी पांडे जी अभी भी बनारस में रह रही हैं, और आज भी वो समाज सेवा में रत हैं
जी।
और कवित्रियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने पहली बार कवित्री सम्मेलन 2011 में कराया।
अच्छा।
जब तक कि कवित्रियां खाली शोपीस की तरह स्टेज पर एक दो होती थी, बाकी सारे कवि होते थे।
बिल्कुल।
आज सिर्फ कवित्री सम्मेलन कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज हम जब कवित्री सम्मेलन करते हैं, हम जब कविता पाठ कवि गोष्ठी रखते हैं, तो अब आप देखेंगे कि पुरुष कम होते हैं, स्त्रियां ज्यादा होती हैं।
जी जी।
तो ये परिवर्तन जो समाज में आया है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों के योगदान जुड़े हुए होते हैं
जी। बिल्कुल।
तो इस दृष्टि से मैंने लिखा, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसने भी उस उपन्यास को पढ़ा उसने एक लाइन जरूर लिखी कि हमने 1 go में इसको पढ़ा, मतलब एक बार शुरू किया तो पढ़ना नहीं छोड़ सके,
इतना रोचक।
तो ये मेरी लेखनी का कमाल नहीं है, ये उस ऊपर वाले का कमाल।
बिल्कुल।
मैंने आपको लिखा ना कि रचनाकार स्वयं श्रेय दे जाता है मुझे, क्योंकि मेरे बूते में थोड़ी है इस तरह का कुछ लिखना, और ये मेरा पहला उपन्यास भी था। लेख, नाटक, कहानियां, एकांकी, ये सब तो मैं बचपन से लिखती आई हूँ, और सबसे ज्यादा कविताएं ही लिखी है मैंने
जी।
और डायरी के पन्ने बहुत लिखे हैं, लेकिन उपन्यास ये मेरा पहला अनुभव।
इस उपन्यास के विषय में थोड़ा सा बताना चाहेंगी मैम?
इस उपन्यास मतलब मंजरी जी की कहानी बताऊं
जी, थोड़ा सा अगर आप इसका हल्का सा संकेत दे
दें। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि एक लड़की जो कि 16 साल की एक नाबालिग लड़की है
जी,
और जिसे सिर्फ पढ़ने, संगीत, कला और पढ़ाई में जिसका शौक है और अपने पिता की बहुत लाडली है
जी,
पांच भाई के परिवार के साथ रहती है लेकिन पिता की सबसे लाडली बच्ची है और बहुत बेबाक, बहुत ही खिलंदड़ी जिसका नेचर है, जिसका स्वभाव है
जी।
वो बालिग होने के पूर्व ही गलत फहमियों की उपज के कारण किडनैप कर ली जाती है
जी।
एक ऐसे बंदे से जिस जो कि कहीं राजनीतिक प्रभाव रखता है और इसको पसंद करता है, इसकी खूबसूरती को पसंद करता है और इसको जबरदस्ती उठा लेता है और जबरदस्ती इसकी शादी होती है। नाबालिग है इसलिए उसके समय इसको सुधार गृह में 10 दिन रहना पड़ता है
जी।
क्योंकि ये 10 दिन बाद बालिग होने वाली है तो कानूनन शादी नहीं हो सकती है
जी।
तो वो और इस चक्कर में इनके माँ बाप इनसे दूर हो जाते हैं, भाई बहन दूर हो जाते हैं और इस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है। जिस व्यक्ति से इनकी शादी होती है वो व्यक्ति उसको लगता है कि वो इसको प्यार करता है लेकिन मेरी लेकिन जो उसका चरित्र है उससे ये समझ में आता है कि इसको पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। वो तो एक शरीर की खूबसूरती का एक आकर्षण था जो इसको उठा लेता है, एक खिलौना चाहिए था उसे, एक खिलौने पे दिल आ गया और वो उसको चाहिए और वो उसने हासिल कर लिया, उससे मन भरा, दूसरा खिलौना चाहिए, तीसरा खिलौना लाइक। तो वो जो है और उस चक्कर में मतलब किसी तरह ये उनसे समझौता करती है, दो बच्चे भी पैदा होते हैं लेकिन कब तक, इतने साल समझौता करे
जी।
तो वो जो पूरा जो इनका जीवन घटनाक्रम, 10 साल जो इन्होंने समझौता किया उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार होता है कि बस अब आगे और नहीं, तो वो जब और नहीं की बात आती है तब जो ये उसके बाद जो ये झेलती हैं अकेली औरत भारतीय समाज में
जी,
और वो भी परित्यक्ता के रूप में या खुद भले ही इन्होंने छोड़ा हो, तो उसके जीवन की कठिनाइयां और उन कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ना और उसके बाद वहां तक पहुंचना कि उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है,
बहुत बड़ी बात
ये। तो वो जो है ना वो सारी चीजें जब आप उसको पढ़ोगे जानोगे
जी, जी।
तो आज उनकी डॉक्टर मंजरी पांडे जी की आवाज में जो कशिश है
जी।
वो जो गजल गाती हैं और जो लिखती हैं, मतलब वैसी आवाज, वो कशिश ही तभी आता है जब आदमी इतने सारे दर्द को लेकर,
बिल्कुल बिल्कुल दर्द उभर के आता है जी मैम, बिल्कुल ठीक।
तो बहुत आनंद आता है जब उनको आप सुनेंगी।
चलिए, हम मंजरी पांडे जी को भी हमारा प्रयास रहेगा कि वो आए,
जरूर आएंगे,
बिल्कुल
उनका नंबर आपको भी
बिल्कुल बुलाएंगे मैम उनको हम
जी।
ऐसे ऐसे लोगों की बातें जानी, हालांकि मैं तो कहती हूँ ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ, भगवान ना करे कि अब किसी के साथ आ गया ऐसा हो, लेकिन हुआ है तो ऐसे लोगों के जीवन चरित्र हमको प्रेरणा देते हैं सीखने की, हमको
प्रेरणा देते हैं बहुत कुछ सीखने जी।
बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे विषय पर, एक अछूते विषय पर या कह लीजिए कि बोल्ड विषय पर आपने लिखने का प्रयास किया।
हाँ बिल्कुल, बहुत बोल्ड लिखा भी, बहुत बोल्ड है।
अच्छा जी जी, क्या कहा जाए मैम इस मामले में।
आप जरूर उसे पढ़े, अमेज़न पर उपलब्ध है किताब,
बिल्कुल
उसे मंगा सकते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु या अंग्रेजी जो भी चाहें
जी मैम, बिल्कुल।
और बोले,
और मैम इस समय आप डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी के श्रीमद भगवद गीता के काव्यानुवाद की व्याख्या कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे।
हाँ, आपको जो मैंने बताया, जो हम दिल से दिल का कार्यक्रम कर रहे थे जहाँ हमें डॉक्टर मंजरी पांडे मिली, वही हमें डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी भी मिली।
अच्छा।
और मुझे मृदुल कीर्ति जी के बारे में जो ये था कि वो जल्दी किसी से बात नहीं करती हैं, अपने में रहती हैं और वो बहुत बड़ी दार्शनिक है, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत नाम किया है उन्होंने। उन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति में जो हमारे वेद हैं, चारों वेद, उपनिषद, सांख्य योग, विवेक चूड़ामणि, तो ये जो ग्रंथ है, जो जिसको कहें कि अमूल्य ग्रंथ है, अनमोल ग्रंथ है
जी जी,
इन ग्रंथ जो ये सारे ग्रंथ जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं, उन ग्रंथों का काव्यानुवाद और व्याख्या और मतलब जो उन्होंने कार्य किया वो अपने आप में अद्वितीय है
जी।
तो जब मैं उनसे उनसे जब मेरी बातचीत हुई, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं।
अच्छा।
तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई उनके साथ ये कार्यक्रम किया और उनके बारे में जैसे जैसे जानती गई हमारा रिश्ता बढ़ता चला गया और आज तो हम दोनों जैसे एक सिक्के के दो पहलू के जैसे दोनों जो है एक ऐसे हो रखे हम लोग कि हम दो दिन बात ना करें तो उनसे जो बातें होती रही और जो उन्होंने गीता का काव्यानुवाद किया उनकी विवेक चूड़ामणि अभी मैं पढ़ रही हूँ जो उन्होंने शंकराचार्य मतलब कमाल का लिखा है
जी।
तो उन्हीं को तो उनके जो उपनिषद की भी जो उन्होंने व्याख्याएं की हैं और मेरा बहुत ज्यादा इन सब चीजों में जैसा कि आप समझ ही गए हो बहुत ज्यादा मेरी रुचि रहती है तो उन्होंने मुझे करीब एक डेढ़ महीने पहले तो उन्होंने कहा था कि क्यों ना उपनिषद पर आप कार्यक्रम रखो उपनिषद के जो मंत्र हैं तो एक एक मंत्र को लेकर के उसकी व्याख्या की जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए उसको
जी।
तो हमने कहा ठीक है बिल्कुल हम ऐसा करेंगे तो क्योंकि उन्हें लगा कि अभ्युदय का जो पटल है वहां से लोगों तक कहीं तक बात पहुंचे बस इतनी बात है जो कार्य उन्होंने किया है वो हर जन तक पहुंचे तो एक बहुत सुंदर भारत निकल कर आएगा कि जो आज भारत में जितनी सारी समस्याएं हम देख रहे हैं उन समस्याओं का कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति और साहित्य को भूल गए
बिल्कुल
उन्हें याद कराना बहुत जरूरी है
जड़ों से कट गए जी
बिल्कुल। तो फिर पिछले महीने उन्होंने ये बात कही थी मुझसे उपनिषद के लिए फिर अचानक शायद उनके मन में आया कि नहीं उपनिषद हम बाद में करेंगे क्यों ना पहले गीता के बारे में किया जाए तो कोई एक आरती सिंह है जो कि उनके रोज एक गीता के एक दोहे को ट्विटर पर डालती हैं
अच्छा
जो उन्होंने काव्यानुवाद किया है गीता के श्लोक का तो वो जिस छंद में उन्होंने सवैया छंद में काव्यानुवाद किया ब्रज भाषा में
अच्छा।
तो वो उसको एक एक श्लोक वो डाल रही हैं आरती सिंह जी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप उसको गा करके डालिए उसमें उसको क्योंकि सवैया छंद में है तो आप गाकर डाल सकती हैं तो मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है बहुत सुंदर है क्योंकि हम तो समाज के लिए अगर हमें कुछ करने का इतना सुंदर अवसर मिल रहा है तो और क्या चाहिए तो पिछले साल मैंने इनका काव्यानुवाद पढ़ा था तो मैंने उसकी व्याख्या की थी और व्याख्या करके एक एक श्लोक की इनको भेजी थी जो कि इन्हें बहुत पसंद आई थी
जी। तो एक श्लोक सुनाना चाहेंगी मैम
श्लोक सुनाना चाहूंगी जरूर आप चाहेंगी तो बिल्कुल
हम तो चाहेंगे आपने कहा कि हमारा मन आया
श्लोक से तो ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको इनकी एक कविता है जो कि गीता के ही बात को सामने रखती है आप चाहेंगे तो श्लोक सुना दूंगी
बिल्कुल कविता सुना रेगुलर
सुना रहे हाँ तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी तो उनकी ये इच्छा थी और उनका जो ये सुझाव था बहुत सुंदर था और मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे उनके माध्यम से अगर इस कार्य के लिए चुना है तो इसपे अच्छा सौभाग्य नहीं हो सकता
बिल्कुल।
तो फिर अभी वो रोज सुबह एक या दो श्लोक समय के हिसाब से क्योंकि मैंने उनका काव्यानुवाद की व्याख्या पिछले साल की थी तो और उसको फिर से पढ़ा फिर से जाना और एक ब्रिज चोपड़ा है बेंगलोर में जो कि दर्शन और अध्यात्म में वो भी बहुत आगे निकल चुकी हैं तो उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से अपने गुरु के अंग्रेजी में लिखे गए गीता रहस्य को हिंदी में उन्होंने काव्य अनुवाद किया था पूरा और उसकी एडिटिंग के लिए भी उन्होंने मुझे ही दिया था और उस दृष्टि से उसको भी पूरा मैंने पढ़ा था क्योंकि एडिटिंग करनी थी एक एक अध्याय की गीता के 18वें अध्याय की एडिटिंग तो कहीं ना कहीं गीता के मैं धीरे धीरे बहुत नजदीक पहुंच चुकी थी
जी।
और फिर मृदुल कीर्ति जी का काव्यानुवाद तो इस तरह से तो फिर वो कार्यक्रम इस तरह से उसकी शुरुआत हुई और गणेश चौथ से मैंने उसको शुरू किया है और उसका YouTube जो है YouTube के छोटे छोटे वीडियो एक या दो श्लोक के हर रोज में अभ्युदय के फेसबुक अभ्युदय के यूट्यूब चैनल पर उसको डाल देती हूँ मेरे नाम से ही है
जी जी।
तो उस पर डालते हैं फेसबुक लाइव भी कर देती हूँ कभी कभी तो आप सुनना चाहेंगी तो ये इनका इनके जो मृदुल कीर्ति जी के जो भजन है ना वो भी अपने आप में समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गीता की बात ही कहते हैं हमसे तो ऐसे ही सुना दूं या आप गाकर सुना
गाकर सुनाएं मैम गाकर तो अच्छा ही लगेगा बिल्कुल गाकर सुनाएं
अच्छा अली रे मोहे बहुत ही अचरज होय अली रे मोहे बहुत ही अचरज हो माटी के तन रही मो के हित
माटी की तन रही वो कीत पाथर महल संजो अलीरी मुहे बहुत ही अचरज हो। इस तरह से इन्होंने जो है ना एक एक देखिए मैं इसको अब पढ़ के सुनाती हूँ समय ज्यादा नहीं लगे इसलिए। कौड़ी कौड़ी गिनत गिनत पर सांस गिनत नहीं कोई धन 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 करत करत ही निधन एक दिन होए आलीरी मोहे बहुत ही अचरज होए। और आगे देखिए ये कहती हैं भरी तिजोरी कनक कंकरी हाथ तो खाली धोए मकड़ जाल संसाल घनेरा फसत मुदित मन खोए फसा जीव भव मृग तृष्णा में अंत समय क्या हुए। और बहुत सुंदर इन्होंने प्रयोग किया है एक शब्द का देह गेह और नेह में उलझे मन सुलझावे कोए माँ को गर्भ कोठरी अंधरी पुनि पुनि जावो सोए पुनरपि जन्म मरण अति दुर्लभ तबहु भय नहीं ओए आलीरी मोहे बहुत ही अचरज हो। तो जब इन्होंने अपनी ये कविता मुझे भेजी थी तो मैंने इसकी व्याख्या लिख करके भेजी थी
जी।
काफी लंबी चौड़ी व्याख्या है अभी नहीं सुना पाऊंगी
जी जी।
तो बहुत सुंदर लगा था मुझे
मृदुल कीर्ति जी की इस गीता के काव्यानुवाद पर और आपने जैसा बताया उपनिषदों पर भी उन्होंने किया तो इन सब पर तो मैम एक अलग से कार्यक्रम किया जा सकता है क्योंकि
बिल्कुल बिल्कुल इन पर तो आप अलग से कार्यक्रम करी और खाली मृदुल कीर्ति जी के बारे में आप जानना चाहेंगी मैं जरूर बताऊंगी और मैं कहूंगी कि आप डायरेक्ट मृदुल कीर्ति जी से भी बात
करें। बिल्कुल करेंगे मैम बिल्कुल करेंगे
बिल्कुल
ऐसे लोगों को तो हम
बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है
ऐसे लोगों से तो बात करना और उनको हम अपने कार्यक्रम में जो हमारे श्रोता सुनी हमारा सौभाग्य होगा मैम
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके क्योंकि सच में कह रही हूँ ये नहीं कि मैं आपसे खाली बोल दे रही हूँ क्योंकि जैसे आपकी संस्था के बारे में जाना आपके साहित्यिक सफर के बारे में कैसे आपने शुरू से मतलब आपके माता पिता ने स्वाध्याय करके और आप लोगों के अंदर इस चीज को डाला मतलब हर चीज बहुत सीखने की है कि डिग्री हासिल करने से नहीं खाली कुछ होता हम अपना स्वाध्याय करके भी बहुत चीजों को हासिल कर सकते हैं और फिर कैसे आपने संस्था बनाई आपने उपन्यास और इतनी इतनी विधाओं में लिखा वो सब देख के सच में कह रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मैम लग रहा है कि अभी मैं आपसे बहुत सारी बातें और पूछूं लेकिन शायद आपका और भी कुछ कार्यक्रम है आप उसमें व्यस्त हो
नहीं कोई बात नहीं तो आपने एक शुरुआत में मेरी कविता की बात भी की
जी बिल्कुल वो कविता तो आप जरूर सुनाए
कौन सी कविता के लिए आपने कहा था तो एक कविता जरूर मैं आपको पंक्तियां सुना देती हूँ
जी बिल्कुल
समय तो होता जा रहा है मैं वही सोच रही थी कि कौन सी एक इधर में लिखी एक नई कविता कुछ पंक्तियां उसकी सुना पीड़ से चीखता जा रहा था शहर खून था श्वेत पर रिस रहा था शहर कहने को तो सभी थे मनुज ही यहाँ कहने को तो सभी थे मनुज ही यहाँ पर मनुजता कहाँ कह रहा था शहर पर मनुजता कहाँ कह रहा था शहर हर किसी मोड़ पर श्रद्धा रोती दिखी हर किसी मोड़ पर श्रद्धा रोती दिखी जंगली जानवर बन रहा था शहर प्यार की प्यास ले बाल फिरते रहे प्यार की प्यास ले बाल फिरते रहे साथ की आस ले फिर रहा था शहर हर कोई बंद है अपने खोलों तले हर कोई बंद है अपने खोलों तले तन्हा जीते हुए मर रहा था शहर
बहुत सुंदर बिल्कुल बहुत
तन्हा जीते हुए मर रहा था शहर और इंदु तमके ही हाथों विकासा लगे इंदु तमके ही हाथों विकासा लगे रोशनी की तलब बुन रहा था शहर रोशनी की तलब बुन रहा था
बहुत
शहर
बहुत
तो एक ये कविता थी कविताएं तो बहुत अलग अलग छंदों में और मैं वैसे स्वच्छंद कविताएं ज्यादा लिखती हूँ तो कभी और मौका लगेगा तो जरूर आपको सुनाऊंगी
बिल्कुल मैम इसी इसी वादे के साथ आपको मैं आज आपको आभार देती हूँ मैम कि आज आपने इतना समय दिया और एक वादा आपसे चाहती हूँ कि आप फिर से हमारे कार्यक्रम में आए और हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगी
जरूर आएंगी और आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो अगली बार के कार्यक्रम में हम किसी एक विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल मैम,
आज तो आप पूरी तरह से जाना चाह रहे थे तो
अभी तो आज हमने आपके बारे में जाना, और आपको अगर आप आएंगे हमारे कार्यक्रम में तो जैसा आपकी भी इच्छा और हम भी चाहते हैं कि दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने की जो थोड़ी सी कोशिश, अगर हम उसमें थोड़ा सा एक अपना योगदान दे सकेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कोशिश हमें अब यही करनी है।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल
इसमें हम कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा
जी मैम।
चलिए
जी मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम, फिर से आपका एक बार आभार और फिर
धन्यवाद
जी मैम,
बहुत बहुत धन्यवाद
मैम, हमारा सौभाग्य मैम। नमस्कार मैम।
नमस्कार, नमस्ते।